नमस्कार भारत, 26 दिसंबर दिन बुधवार, मैं हूं वात्सल्य राय। अमरीकी हिरासत में एक और प्रवासी बच्चे की मौत, ट्रंप ने फिर बताई मैक्सिको सीमा पर दीवार की जरूरत। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात और आरक्षण की वकालत, कानून मंत्री के बयान को कैसे देख रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक।
चुनाव में जो खूब सारे दलित वोट मिले और पिछड़े वर्ग के वोट मिले, मुझे लगता है वो उसको वापस कंसोलिडेट करने के प्रयास में है।
और खास रिपोर्ट जोधपुर के उस गांव से जहां मेहमान बनकर आते हैं विदेशी पक्षी।
इतना हो गया, लगा हो गया कि ये 6 महीने आती है ना, तब ऐसे मन भरा भरा रहता है, तब ये जाती है ना, तब ऐसा लगता है कि गांव पूरा छोड़ के चला गया, सुना सुना हो जाता है पूरा गांव।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, भूमिका राय से। अमरीकी हिरासत में एक और बच्चे की मौत हो गई है। आव्रजन अधिकारियों ने 8 साल के इस बच्चे की मौत की पुष्टि कर दी है। ये 8 वर्षीय बच्चा ग्वांतेमाला का था। एक ही महीने में ये दूसरा मामला है जब अमरीका मैक्सिको सीमा पार करने के दौरान हिरासत में ले गए एक अप्रवासी बच्चे की मौत हो गई है। इससे पूर्व जिस बच्चे की मौत हुई थी वो भी ग्वांतेमाला से ही थी और उनकी उम्र 7 साल थी। अमेरिका कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन फोर्स का कहना है कि 8 वर्षीय इस बच्चे को और उसके पिता को क्रिसमस की शाम हिरासत में लिया गया था। तभी एक एजेंट ने देखा कि बच्चा बहुत कमजोर नजर आ रहा है। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे सामान्य सर्दी बुखार बताकर वापस भेज दिया गया था, लेकिन शाम को बच्चे की हालत बिगड़ गई और फिर उसे दोबारा अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन मध्यरात्रि में बच्चे की मौत हो गई। मौत का कारण अब भी स्पष्ट नहीं है। सीरिया की सरकारी मीडिया का कहना है कि उसने राजधानी दमिश्क के पास दुश्मनों द्वारा दागी गई मिसाइलों को विफल कर दिया है। एक सैन्य अधिकारी का कहना है कि इस हमले में हथियारों के एक जखीरे को निशाना बनाया गया था। इस हमले में 3 सैनिक भी घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है जिसमें कोई चीज शहर के ऊपर मंडराती हुई नजर आ रही है और तभी तेज धमाका हो जाता है। ये धमाका इतना तेज था कि पूरे शहर में इसे सुना गया। इसराइल ने इस हमले की पुष्टि की है। सूडान की राजधानी खार्तूम में राष्ट्रपति भवन पर होने वाले एक बड़े और श्रृंखलाबद्ध प्रदर्शन को सुरक्षा बलों ने रोक दिया है। सूडान में बीते कुछ दिनों से लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि राष्ट्रपति ओमर अल बशीर अपने पद से इस्तीफा दें, जो पिछले 30 सालों से सत्ता पर काबिज हैं। देश के कई हिस्सों में आगजनी की खबरें आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने कुछ जगहों पर आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। प्रदर्शन में शामिल होने वाले सूडान प्रोफेशनल एसोसिएशन के सदस्य मोहम्मद नगी का कहना है, हम लोग आज राष्ट्रपति भवन के पास प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को एक संदेश देना चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके वे अपने पद से इस्तीफा दे दें ताकि कुछ बदलाव आए, लेकिन सेना ने हम पर आंसू गैस के गोले छोड़े। ये प्रदर्शन करीब 4 घंटे तक चला। सेना ने लोगों को तितर बितर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनके बीच झड़पें भी हुई, लेकिन बाद में लोग फिर इकट्ठा हो गए। ये थे प्रदर्शन में शामिल मोहम्मद नगी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इंडोनेशिया में शनिवार को आए सुनामी में अब तक स्थिति सामान्य नहीं हुई है। देश में राहत एवं बचाव कार्य में जुटी टीमें गांव-गांव जाकर राहत कार्य का जायजा ले रही हैं। अब तक इस हादसे में 429 लोगों के मारे जाने की खबर है। करीब 150 से ज्यादा लोग लापता हैं। सुनामी के चलते इमारतें ढह गई हैं और लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। ऐसे लोगों की संख्या करीब 16,000 के आसपास है। इंडोनेशियाई पुलिस इस तबाही में अपने माँ बाप से बिछड़ गए बच्चों को उनके परिवार से मिलाने की हर संभव कोशिश कर रही है। रेड क्रॉस की कैथी म्यूलर ने बीबीसी को राहत कार्यों के बारे में बताया। ये एक चुनौतीपूर्ण समय है। अभी फिलहाल यहाँ बारिश का समय है, लगभग हर रोज ही बारिश हो रही है। इसके चलते परिस्थितियाँ और मुश्किल हो गई हैं। लोगों में डर है कि ऐसा दोबारा भी हो सकता है, इसलिए बहुत से लोग तो खुले आसमान के नीचे ही सो रहे हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में, आज आपके साथ मैं हूँ वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। भारत में क्रिकेट फैंस की सुबह आज जल्दी हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से मेलबोर्न में तीसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ है। भारत के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है। भारत ने इस मैच में नई सलामी जोड़ी को आजमाया। पहला टेस्ट मैच खेल रहे मयंक अग्रवाल के साथ हनुमा बिहारी ने पारी की शुरुआत की। हनुमा 8 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन मयंक पहले ही मैच में रंग में दिख रहे हैं और फिलहाल 56 गेंदों में 31 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं और उनका साथ दे रहे हैं चेतेश्वर पुजारा। भारत का स्कोर है 1 विकेट पर 45 रन। मैच के बारे में हम आगे बात करेंगे। नमस्कार भारत की शुरुआत करेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। अमेरिका की हिरासत में एक और प्रवासी बच्चे की मौत हो गई है। इस बच्चे की उम्र 8 बरस थी। ये ग्वाटेमाला से अमेरिका पहुंचा था और अमेरिकी बॉर्डर पुलिस की हिरासत में था। इसके पहले ग्वाटेमाला की ही एक 7 बरस की बच्ची की भी हिरासत में ही मौत हो गई थी। इसे लेकर दुनिया भर में सवाल उठे थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है भूमिका राय। जी भूमिका
जी, वात्सल्य आपने बता ही दिया कि इसी महीने में 2 बच्चों की मौत हो गई है। एक 8 साल के बच्चे की कल मौत हुई, इससे पहले 7 साल की एक बच्ची की मौत हो चुकी है। इस साल ग्वाटेमाला से हजारों प्रवासी अमरीकी सीमा पर पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि वो गरीबी और हिंसा की वजह से अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं। ग्वाटेमाला के अलावा होंडुरास और एल सल्वाडोरा के लोग भी एक बड़ी तादाद में अमरीका पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कई ने अमरीकी सीमा तक पहुँचने के लिए 4,000 किलोमीटर से भी लंबा सफ़र तय किया है और ये काफिलों में चल रहे हैं। ये लोग अमेरिका पहुंचने के बाद भी इनके सामने गिरफ्तारी, जेल भेजे जाने और वापस देश भेज दिए जाने जैसे खतरे हैं। बावजूद इसके इनकी संख्या थम नहीं रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो प्रवासियों को अमरीका में नहीं घुसने देंगे और ये बहुत सख्त लहजे में उन्होंने कहा है। ट्रंप का कहना है कि अदालत से शरण लेने की मंजूरी मिलने के बाद ही लोगों को अमरीका में आने दिया जाएगा। इस बीच ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने या बाड़ लगाने की जरूरत की बात दोहराई है।
You know, there's a problem in this world today. It's called human trafficking. And we're not going to let that take place.
दुनिया के सामने आज एक बड़ी समस्या है। ये मानव तस्करी की समस्या है। हम ये नहीं होने देंगे। हम इन तस्करों को पकड़ने के लिए काम कर रहे हैं। ये बुरे लोग हैं। हम अवरोध के बिना इन्हें नहीं रोक सकते। हम दीवार के बिना ऐसा नहीं कर सकते। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो मेक्सिको सीमा है उससे लोग जिस तरीके से आ रहे हैं उसके सख्त विरोध में खड़े हैं और उनका कहना है कि जब तक उन्हें मंजूरी नहीं मिलेगी अदालत से वो उन्हें नहीं आने देंगे। लेकिन प्रवासियों
लेकिन इन के 2 बच्चों की मौत के बाद ट्रंप की जो सख्त अप्रवासन नीति है उसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इस बच्चे को इलाज भी दिया गया था लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शुक्रिया भूमिका इस पूरे अपडेट के लिए। और अब बात इंडोनेशिया की, जहां शनिवार को आई सुनामी की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 400 से ज्यादा हो गई है। करीब 150 लोग अब भी लापता हैं। बीबीसी संवाददाता समीर हाशमी फिलहाल इंडोनेशिया में हैं। हमारी सहयोगी गुरप्रीत सैनी ने समीर से बात की और वहां की ताजा स्थिति के बारे में पूछा।
स्थिति अभी भी काफी खराब है क्योंकि यहां पे 3-4 दिन से काफी बारिश हो रही है। मौसम काफी खराब है। इसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो यहाँ की लोकल टीम्स है जो जा रही है एक बीच से दूसरे बीच तक, वो या समंदर के पास लोगों को खोजने के लिए उनको काफी दिक्कत आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो इलाका है काफी बड़ा है, काफी मशहूर है क्योंकि यहाँ पे काफी लोग छुट्टियां मनाने आते हैं और इस वक्त क्रिसमस का समय है तो काफी लोग यहाँ पे छुट्टी पे आए हुए थे और एकदम से सुनामी जो है वो बिना कोई चेतावनी दिए शनिचर की रात को यहाँ पे सुनामी आया। उससे काफी लोग जो हैं जिनके घर थे वो तबाह हो गए, जो होटल्स और रिजॉर्ट्स थे वो भी तबाह हो गए। रेस्क्यू टीम्स जो हैं 3 दिन से लोगों को खोज रही हैं क्योंकि काफी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जितनी भी इमारतें हैं वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं। काफी लोग उसके नीचे पाए गए थे। अभी भी 150 लोग हैं जिनको ये ढूंढ नहीं पाए हैं, तो उसको ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो रोज निकल जा रही हैं, उनको ढूंढ रही हैं। उसके अलावा जो है तकरीबन 15,000 लोग जो हैं बेघर हो गए हैं, वो अलग अलग जगह पे इस वक्त रुके हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों के साथ, कुछ रिलीफ कैंप्स में। तो उनको भी अब सामान पहुंचाया जा रहा है, खाने का, दवाइयां, कपड़े, ये सब जो बेसिक चीजें हैं वो दी जा रही हैं सरकार की तरफ से, तो स्थिति अभी भी पूरी तरह से काबू में नहीं है।
सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है वहाँ पे?
जैसा ही मैं बता रहा था आपको, सरकार ने जो है वो रिलीफ कैंप्स लगाए हैं जिसमें लोग बड़े तादाद में सुध मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिनके घर तबाह हो गए, इनके घर समुन्दर के पास थे, इनको जो है राशन पानी और दवाइयाँ दे जा रही हैं। यहाँ की सरकार ने जो घोषणा की है वो ये है कि एक नया सुनामी वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा ताकि आगे चल के अगर ऐसा कोई सुनामी आने वाला हो तो वो पहले ही से अलर्ट कर दे और चेतावनी दे दे। सरकार की काफी आलोचना यहाँ हुई है क्योंकि ये जो सिस्टम था इनका सुनामी सिस्टम वो खराब था, इसलिए जो ये सुनामी आया 3 दिन पहले उसकी कोई चेतावनी नहीं थी, सरकार को भी नहीं, और उसकी वजह से वो लोगों को भी चेतावनी नहीं दे पाई। तो एक नया सिस्टम लगाया जाएगा जो कि बहुत एडवांस होगा, जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि आगे चल के अगर कोई ऐसा सुनामी आया वो पहले ही से चेतावनी दे पाएगा।
क्या कोई और चेतावनी भी जारी की गई है?
लोगों को समंदर से दूर रहने के लिए कहा गया है अभी 2-3 दिन तक, बुधवार गुरुवार तक। सरकार अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है।
ये थे बीबीसी संवाददाता समीर हाशमी और उनसे बात कर रही थी गुरप्रीत सैनी। आगे बढ़ते हैं। भारत के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात एक बार फिर उठाई है। उनका कहना है कि सरकार न्यायपालिका में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देना चाहती है। कानून मंत्री का ये बयान बहस का मुद्दा बन गया है, कई सवाल भी उठ रहे हैं। इन सवालों की पड़ताल की है बीबीसी संवाददाता अनंत प्रकाश ने, उनकी रिपोर्ट पेश कर रही हैं कमलेश मठेनी।
जहां तक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं इसका पूरा समर्थन कि एक ऑल इंडिया एग्जामिनेशन होगा तो देश का बेस्ट टैलेंट सामने आएगा। हम इसमें एडिक्वेट रिजर्वेशन भी देंगे जो भारत के संविधान का मैंडेट है।
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बीते काफी समय से अखिल भारतीय न्यायिक सेवा शुरू करने के समर्थन में तर्क दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ये भी कहा कि इस सेवा के शुरू होने पर उनकी सरकार देश के वंचित वर्ग को आरक्षण भी देगी ताकि न्यायपालिका में वंचित समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ सके। इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान ने भी इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने की वकालत की। बीजेपी ने SC/ST कानून पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जारी होने के बाद अध्यादेश लाने में जो देरी की थी उसके बाद उसे दलित समाज के गुस्से का सामना करना पड़ा था, लेकिन मोदी सरकार आखिरकार इस मुद्दे पर अध्यादेश ले आई। इसके बाद बीजेपी के वोट बैंक समझे जाने वाले सवर्ण समाज ने सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर उतर बीजेपी के इस कदम का विरोध किया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी अपनी आगे की रणनीति में सवर्ण समाज को ताक पर रखकर दलित समाज को लुभाने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषक राधिका रामाशेषन इसे बीजेपी की राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देख रही हैं।
मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को 2014 और फिर उसके बाद में 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो खूब सारे दलित वोट मिले और पिछड़े वर्ग के वोट मिले, मुझे लगता है वो उसको वापस कंसोलिडेट करने के प्रयास में है, इसीलिए इस तरह के बयान उनके जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनकी ओर से आ रहा है।
अखिल भारतीय न्याय सेवा को शुरू करने के पक्ष में तर्क दिया जा रहा है कि न्यायपालिका में निचले स्तर पर काफी ज्यादा रिक्तियां हैं और इस सेवा के माध्यम से इन रिक्तियों को भरा जा सकता है, लेकिन अगर इसके तकनीकी पहलुओं में जाएं तो पता चलता है कि संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के तहत नियुक्तियों से जुड़ा अधिकार राज्य लोक सेवा आयोग और हाईकोर्ट को दिया गया है। हालांकि केंद्र सरकार राज्यसभा में एक प्रस्ताव पास करके ये सेवा शुरू कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसे 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। ऐसे में बीजेपी के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव पास कराना काफी मुश्किल है, तो इस मुद्दे पर बीजेपी नेताओं के बयानबाजी को किस नज़र से देखा जाना चाहिए। कानूनी मामलों के जानकार विराग गुप्ता इसे एक शुद्ध राजनीतिक मुद्दा मानते हैं।
देखिए, संविधान के 42वें अमेंडमेंट के माध्यम से आर्टिकल 312 को समाहित किया गया था, जिसके तहत ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की अथॉरिटी केंद्र सरकार के पास है, लेकिन जो अभी वर्तमान की व्यवस्था है उसमें हाई कोर्टों के तहत इन वैकेंसीज का सुपरविजन होता है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हाई कोर्ट के पास रहता है, और जो अदालतों की व्यवस्था है, जो उनके लिए फाइनेंस की व्यवस्था है, वेतन भत्ते हैं, वो राज्यों द्वारा दिए जाते हैं। तो एक फेडरल सिस्टम में राज्यों की सहमति के बगैर केंद्र सरकार इस पे शायद ही कदम उठा पाए।
इस समय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और केरल जैसे राज्य जिला जजों की नियुक्ति में जाति आधारित आरक्षण देते हैं। इन सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को इस बात का प्रमाण देना होता है कि वह उसी राज्य का निवासी है। लेकिन अखिल भारतीय न्यायिक सेवा शुरू होने की स्थिति में वंचित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को पूरे देश में उपलब्ध नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा। हालांकि विराग गुप्ता मानते हैं कि इससे आरक्षण में जटिलता आएगी।
वर्तमान सरकार के तमाम नेता हैं, उदित राज हों या रामविलास पासवान जी हों या दूसरे लोग हों, वो जुडिशरी में रिजर्वेशन की बात करते हैं, पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से वो जो मुद्दा है नहीं सुलझेगा। और मैं समझ रहा हूँ कि इसमें एक दांव पेच की राजनीति हो रही है, जिससे अदालती व्यवस्था भी राजनीति का शिकार हो सकती है।
अगर स्पष्ट शब्दों में कहें तो केंद्र सरकार के लिए इस सेवा को शुरू करना फिलहाल मुश्किल दिखाई पड़ता है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति को आगे ले जा सकती है। मगर देखना ये होगा कि आगामी आम चुनावों में ये मुद्दा बीजेपी को कितना लाभ दे पाएगा।
अनंत प्रकाश की रिपोर्ट सुना रही थी कमलेश मठेनी। और अब बात किसानों की। बीते कुछ दिनों के दौरान कई राज्यों में किसानों के कर्ज माफ हुए हैं। कर्नाटक में भी पूर्व की कांग्रेस सरकार ने किसानों के सहकारी कर्ज माफ किए थे। मौजूदा सरकार ने भी किसानों के 44,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए हैं। लेकिन क्या इससे किसान खुश हैं? बता रहे हैं इमरान कुरैशी अपनी इस रिपोर्ट में।
मोहन कुमार की आंखें लगातार उस स्क्रॉल पर टिकी हुई हैं, जहां रेशम कोकून के ऑक्शन में दाम ऊपर नीचे चल रहा है। मोहन कुमार बेंगलुरु ग्रामीण जिले के देवनहली तालुक के मालोपुरे गांव के किसान हैं, जो अपने बनाए हुए रेशम कोकून को सरकारी रेशम कोकून मार्केट में बेचने आए हैं। पहले राउंड में 245 रुपया तक दाम जाकर टिक जाता है। दूसरे राउंड में उन्हें सिर्फ एक सीफर मिलता है और तीसरे राउंड में उनके रेशम कोकून को सिर्फ 255 रुपया मिलता है। आज हमने 30 किलोग्राम बेचा है और कल हमने 35 किलोग्राम बेचा था। हमें कुछ 18,000 रुपये मिले हैं। इसमें से हम रासायनिक गोबर और कीटनाशक दवाओं और काम करने वालों पर लागत खर्च निकाल दिया तो हमें 5,000 रुपये मिलते हैं। इससे तो घर चलाना बहुत मुश्किल का काम है। ये थे मोहन कुमार के शब्द। दरअसल मोहन कुमार के रागी की फसल नाश हो गई, जैसे कि तूर दाल और तरकारी की हुई। कारण साफ है, पिछले 2 साल में बारिश नहीं हुई और पानी की दिक्कत से फसल सर्वनाश हो गई। हालांकि मोहन कुमार ने बैंक से कर्ज लेकर 3 बोरवेल लगाए, लेकिन तीनों में पानी नहीं आया। पिछले साल तत्कालीन सिद्धरामैया की सरकार ने 50,000 रुपयों तक सहकारी कर्ज माफ कर दिया, लेकिन उन पर अभी भी बैंक का कर्ज है, जिसकी वजह से उन्हें बैंक से 11 लाख रुपयों का नोटिस मिला है। तो क्या कर्ज माफ करने से उनके जीवन पर कोई असर पड़ा? मोहन कुमार ने कहा,
परिस्थिति साल मन्ना ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರೆ ಈ ಹೊತ್ತಿಗ್ ನಾವು ಹಂಗ್ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ತಿರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿರ್ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ।
कर्ज माफी से हाँ हम संभल जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि कर्ज माफी के साथ अगर हमें पानी मिल जाता है और अगर हमारे रेशम कोकून को एक अच्छा सा दाम मिल जाता है तो हम कैसे भी जीवन गुजार सकते हैं। ये थे मोहन कुमार के शब्द। मोहन कुमार का कहना है कि अगर उन्हें ये उपलब्धि मिल जाती है तो वो अपने गायों और बकरों के साथ जीवन बिता सकते हैं। लेकिन पास में ही एक और किसान मंजुनाथ परिस्थिति अलग नजरे से देखते हैं। मंजुनाथ के 3 एकड़ जमीन पर गोभी का फूल, केले और थोड़ा चावल उगाते हैं। उन्होंने कहा,
साल मन्ना स्वल्प साल मन्ना 50,000 साल मन्ना।
कर्ज माफी से कुछ अच्छा भी हुआ है और बुरा भी। एक तरफ हमें भी 50,000 रुपयों का कर्ज सहकारी संघ से माफ हो गया और फौरन बाद रासायनिक गोबर और कीटनाशक दवाओं के दाम बढ़ा दिए गए। इससे क्या फायदा होगा? ये थे मंजुनाथ के शब्द। मंजुनाथ की भी वही मांग है जो मोहन कुमार की है, कि उन्हें पानी की व्यवस्था चाहिए और गोबर और कीटनाशक दवाओं के दाम कम करें। लेकिन वर्तमान एचडी कुमार स्वामी की सरकार ने 44,000 रुपयों का कर्ज माफ कर दिया है। जाहिर है कि सरकारें खेती बाड़ी की बीमारी को हल्के में ले रही हैं। वहां बुखार की दवा दिए जा रहे हैं, जहां उनको कैंसर की दवाई देनी चाहिए। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस के एक नोटिस से विवाद शुरू हो गया है। इस नोटिस में सार्वजनिक पार्कों में नमाज पर रोक की बात की गई है। मुस्लिम धर्मगुरु इसे धार्मिक आजादी पर हमला बता रहे हैं। राजनीतिक दल भी पुलिस के इस फैसले के विरोध में उतर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं समीर आत्मज मिश्र।
देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस के एक फरमान ने लोगों को हैरान कर दिया है। पुलिस चौकी के अधिकारी के आदेश के तहत नोएडा सेक्टर 58 में पार्क में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि यह आदेश किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, लेकिन निजी कंपनियों को लिखे गए पत्र में साफ तौर पर मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नोएडा के पुलिस अधीक्षक अजय पाल कहते हैं,
58 थाना क्षेत्र में 58 सेक्टर में जो अथॉरिटी का पार्क है, जिसके संबंध में कुछ व्यक्तियों के द्वारा वहां पर धार्मिक प्रेयर्स के लिए परमिशन मांगी गई थी, जिसकी परमिशन सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से अभी तक नहीं दी गई थी। उसके बावजूद काफी भारी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठे हुए, जिसके बारे में उनको अवगत करवाया गया कि कभी किसी प्रकार की परमिशन अभी तक नहीं हुई है और यही सूचना संबंधित कंपनियों को दी गई थी। यह सूचना किसी धर्म विशेष के लिए ना होकर के सभी व्यक्तियों के लिए है।
बताया जा रहा है कि जिस खास पार्क के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है वो नोएडा अथॉरिटी का है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले यहाँ महज 4-6 लोग ही नमाज के लिए आते थे, लेकिन जब ये संख्या सैकड़ों में पहुंचने लगी तो आसपास के लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस और प्रशासन में की। दूसरी ओर नमाज पढ़ने वाले लोगों ने भी सिटी मजिस्ट्रेट से इसकी इजाजत मांगी थी, लेकिन अभी तक उन्हें इजाजत मिली नहीं है। नोएडा के पुलिस अधीक्षक का भी कहना है कि आदेश स्थानीय लोगों की आपत्ति के बाद लिया गया है। इस इलाके में दर्जनों मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर हैं और यहां काम करने वाले मुस्लिम समुदाय के तमाम लोग शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए पार्क में आते हैं। नोएडा पुलिस के इस आदेश की मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आलोचना की है। लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी मेली कहते हैं कि ये धार्मिक आजादी पर हमला है।
जो हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने रिलीजियस फ्रीडम हर सिटीजन को गारंटी की है, ये उस पर एक हमला है। इस वजह से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने इस डिसीजन को कीपिंग इन माइंड द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और उसी के साथ साथ रिलीजियस फ्रीडम को अपने मद्देनजर रखते हुए अपने फैसले को रिकंसिडर करना चाहिए।
वहीं पुलिस के इस आदेश की गूंज अब राजनीतिक दलों की आवाज में भी सुनी जाने लगी है। इस बीच राज्य के गृह मंत्रालय ने नोएडा पुलिस से इस आदेश के बारे में जवाब तलब किया है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और अब आज के अखबार की बात, भूमिका राय के साथ।
शुक्रिया वात्सल्य जी। आज दिल्ली से छपने वाले प्रमुख अखबारों की बात करें तो दैनिक हिंदुस्तान ने डिब्रूगढ़ के पास बोगीवील ब्रिज के उद्घाटन की खबर को पहले पन्ने पर लिया, लेकिन साथ ही अखबार ने यह भी लिखा है कि इस पुल की आधारशिला रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई है।
बड़ी तकलीफ है उनको, 1997
में उन्होंने आधारशिला रखी थी। इसी अखबार की एक दूसरी खबर की बात करें तो जल्द ही बाजार में 20 रुपए के नए नोट आ जाएंगे, रिजर्व बैंक जल्द ही 20 रुपए के नए नोटों को जारी करने वाला है। चलती कार में आग लगने से ग्रेटर नोएडा में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई, ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पहले पन्ने पर ली है। सिविल सर्विसेज की उम्र नहीं घटाएगी सरकार, इस खबर को प्रकाशित किया है नवभारत टाइम्स ने। इससे पहले कयास लगाई जा रही थी कि सरकार उम्मीदवारों की उम्र सीमा 32 से घटाकर 27 वर्ष कर सकती है। और दिल्ली में कड़ाके की ठंड तो पड़ ही रही है, लेकिन साथ ही प्रदूषण का स्तर भी खतरे के निशान पर है। बहरहाल मंगलवार अब तक के सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा, यह खबर छापी है अमर उजाला ने। दिखने लगा है नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून का खौफ, अब मेहुल चौकसी भी बैंकों का पैसा लौटाने को है तैयार, 13,000 करोड़ रुपए के PNB बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी है मेहुल, ये खबर है दैनिक जागरण की। और आज बैंक कर्मी जो हैं वो हड़ताल पे जाएंगे तो बैंक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, और दिल्ली में तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद तेज हो गई है। तो ये थे आज के प्रमुख अखबारों की प्रमुख सुर्खियां।
बहुत शुक्रिया भूमिका राय। और अब एक खास रिपोर्ट। जोधपुर के खीचन गांव में इन दिनों करीब 20,000 कुरंजा पंछी यानी डेमोसाइल क्रेन बसेरा किए हुए हैं। गांव वाले इन पक्षियों की जमकर मेहमान नवाजी कर रहे हैं। दरअसल राजस्थान की लोक संस्कृति में कुरंजा को संदेश वाहक माना जाता है। सुनिए नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
उस चांदनी रात में प्रियतम तो दूर देश में है, लेकिन रेगिस्तान में या तो महबूबा की तनहाई है या कुरजा का बसेरा है। प्रेसी जब अपने विरह गीत में कुरजा से महबूब को संदेश पहुंचाने का इसरार करती है, रात आंसू में भीग जाती है। उस बियाबान मरुस्थल में सदियों से कुरजा को संदेश की विनती करते विरह गीत गूंजते रहे हैं। इन दिनों खीचन गाँव कुरजा पक्षियों के कलरव से निनादित है। खीचन के सेवाराम माली कोई 2 दशक से इन परिंदों की खिदमत में लगे हुए हैं।
ये डेमोसाइल क्रेन जो मंगोलिया से अगस्त एंड सितंबर फर्स्ट वीक में आ रही है, मार्च एंड में यहाँ से वापस मंगोलिया जाएगी। सुबह 6:30 में इनका आने का टाइमिंग है, 7:30 में इनका फील्डिंग हाउस में बैठने का टाइम है, 10:30 में यहाँ से उड़ान करके विजय सागर एवं रात्रि नाडी, नीमड़ी नाडी, तीजनियों का तालाब जाएगी। शाम को 5 बजे वहाँ से उड़ान करके 35 किलोमीटर सॉल्ट बैठ जाएगी। खाने में सबसे पहला जवार, चूना मिक्सिंग पत्थर, कैल्शियम के लिए सॉल्ट, सॉल्ट वाटर, ये चार चीज खाती है। जो गर्भधारण के समय चार चीज की जरूरत है वो यहाँ खाने के लिए इनको मिलती है।
इन पक्षियों का विचरण देखने दूर दूर से सैलानी आते हैं। स्थानीय लोग हर रोज कोई 15 क्विंटल चुग्गा इन पक्षियों को वितरित करते हैं। इन पक्षियों के सेवा संरक्षण के लिए गांव वालों ने कानूनी लड़ाई लड़ी और स्थान सुरक्षित करवाया है। जब ये परिंदे प्रवास करते हैं गांव गुलो गुलजार रहता है। खींचन के सुनील शर्मा कहते हैं, हम बेसब्री से इन परिंदों की आमद का इंतजार करते हैं।
भावनात्मक तो अब देखो सर, इतना लगा हो गया कि ये 6 महीने आती है ना, तब ऐसे मन भरा भरा रहता है। तब ये जाती है ना, तब ऐसा लगता है कि गांव पूरा छोड़ के चला गया, सुना सुना हो जाता है पूरा गांव। जाते हैं तो मन ऐसे थोड़ा नहीं लगता है, फिर वापस जब सर्दी आती है तो धीरे धीरे चलन होता है। तो इनकी आवाज जो है ना, ये मधुर आवाज है। बाकी जो जैसे कोई पक्षी एक साथ बोले ना तो वो जैसे चिड़चिड़ापन होता है, लेकिन इनकी आवाज है कि इनको सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, मीठा लगता है। गाँव वाले इंतजार करते हैं, बेसब्री से इंतजार करते हैं मेहमान पक्षियों का।
खींचन की आबोहवा और खाना खुराक इन प्रवासी पक्षियों को बहुत पसंद है। खींचन के कैलाशगिरी गोस्वामी कहते हैं, यह इंसान और पक्षियों के बीच रिश्तों की गाथा है।
पूरे गांव वालों का कुर्दों के प्रति प्रेम है, सब इसकी रक्षा करते हैं, इसकी देखभाल करते हैं, इसको चुगा डालते हैं तो कोई इसको छूता नहीं है, कोई इसके पास नहीं जाता है, कोई इसे परेशान नहीं करता है। यहाँ सब तरह से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, इसीलिए हमारे गांव में ये आती है। और आती है तो हम गांव वालों को बड़ी बहुत खुशी होती है। जल्दी है तो हम भी उदास होते हैं। 2 घंटे इसकी कलवर होती है ना, आवाज़ क्राउ क्राउ क्राउ, पूरे गांव में सब घर में खुशी होती है। गर्मी के अंदर ये आती नहीं है तो पूरा गांव सुना हो जाता है।
माली ने चुग्गा स्थल पर कलरव करते परिंदों को देखा और अभिभूत हो गए, क्योंकि परिंदों के कुनबे में इस बार बढ़ोतरी हुई है।
इस बार पक्षियों में से बच्चे बहुत ही ज्यादा नजर आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बच्चे आए हैं इस बार। हर बार बच्चों की संख्या कम आती है, इस बार बच्चों की संख्या ज्यादा आई, संख्या हर साल बढ़ोतरी हो रही है। आज से 20 से 22 23 साल पहले उस टाइम पक्षियों की संख्या 1500 थी, अभी इनकी संख्या 25,000 क्रॉस हो गई है। इनकी संख्या बढ़ोतरी होती रहेगी। एक ग्रुप के आस पास में 8-10 पक्षी घूमते रहते हैं, बाकी वाले आराम से एक पैर के ऊपर नींद लेती है। जब ये जाती है उस टाइम सबसे पहले सुबह खाना नहीं खाती है। जब जाने का ग्रुप जाता है उस टाइम वो फिर गोल गोल गांव के अंदर राउंड लगाती रहेगी, वो बहुत ऊपर हाइट के ऊपर चली जाएगी, उनके बाद में सीधी फ्लाइट करेगी मंगोलिया की तरफ।
नीचे धरती ऊपर आसमान, इंसान ने जब धरती का सीना चाक किया उसे सरहदों में बांट दिया, लेकिन ये परिंदे हैं वे ना सरहदों को मानते हैं ना बंदिशों को। नारायण बारेठ, BBC, खींचन गांव, जोधपुर, राजस्थान।
ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और अब मेलबर्न टेस्ट का हाल बताने के लिए मौजूद हैं अभिजीत श्रीवास्तव जी। अभिजीत, क्या मयंक अग्रवाल आए और छा गए?
बिल्कुल वात्सल्य, भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की है और मयंक अग्रवाल जो पहला टेस्ट खेल रहे हैं अब तक 34 रन बना चुके हैं और 3 चौके भी जड़ चुके हैं, वो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में 2 नए बल्लेबाजों से शुरुआत की है, अपने पारी की शुरुआत की है। हालांकि ये
हनुमा विहारी चल पाए, 8 रन बनाकर आउट हो गए। मयंक अग्रवाल जिनके लिए बहुत दिन से बात हो रही थी कि इनको टीम में लाया जाए,
जी, पहला
और वो चयन को साबित सही कर रहे हैं।
बिल्कुल सही है। और अब तक भारत ने 54 रन बना लिए हैं, हालांकि थोड़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे हैं ये।
जी धीमी बल्लेबाजी, टेस्ट मैच का पहला दिन है, पहला सेशन है, उस हिसाब से तो ठीक ठाक है और हनुमा विहारी तो ठीक ही चल रहे हैं। दूसरा, भारत के लिए यहाँ ये बताना जरूरी है कि सीरीज जीतने का मौका है तो इस मैच में जीतना जरूर होगा।
बिल्कुल,
क्योंकि सीरीज एक से बराबर है। बहुत शुक्रिया अभिजीत श्रीवास्तव इस अपडेट के लिए। और अब चलते चलते मुख्य समाचार भूमिका राय से।
BBC समाचार। अमरीकी हिरासत में एक और बच्चे की मौत हो गई है। आव्रजन अधिकारियों ने 8 साल के इस बच्चे की मौत की पुष्टि कर दी है। ये बच्चा 8 वर्षीय ग्वांतेमाला का था। सीरिया की सरकारी मीडिया का कहना है कि उसने राजधानी दमिश्क के पास दुश्मनों द्वारा दागी गई मिसाइलों को विफल कर दिया है। सूडान की राजधानी खार्तूम में राष्ट्रपति भवन पर होने वाले एक बड़े और श्रृंखलाबद्ध प्रदर्शन को सुरक्षा बलों ने रोक दिया है। इंडोनेशिया में सुनामी के 4 दिन बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हो सकी है। देश में राहत एवं बचाव कार्य में जुटी टीमें गांव-गांव जाकर राहत कार्यों का जायजा ले रही हैं। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे तिलक राज भाटिया। शाम के वक्त 7:30 बजे दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।